वचन। प्रिय श्रोता नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
कठिन रास्ता है, ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्र और परिवारों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य से अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए जिसे आपने हम सब के जीवन में दिया है ताकि हम फिर से बार आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय रेडियो के निकट बैठे हैं अलग अलग स्थानों पर, हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक जब आपके वचन में से सुनता है तो पवित्र आत्मा उन्हें समझाने पाए, सिखाने पाए, एक एक जीवन को स्पर्श करने पाए ताकि हर एक जीवन प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर सके, अपने जीवन को, आचरण को संवारने पाए। पिताजी, आप हम सब के साथ में हो, हमारे सहायक हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब देख रहे थे दूसरे अध्याय के पहले पद में कि इफिसुस नगर और इफिसुस की कलीसिया की पृष्ठभूमि, जिसे देख करके हमें यूहन्ना द्वारा दिया गया यह पत्र या प्रकाशित वाक्य हम पाते हैं। यीशु का संदेश समझना अब आसान होगा। जी हाँ, यह कलीसिया भौतिकवाद और अनैतिकता के वातावरण में मसीही विश्वास में आ गई थी। तो आइए हम देखें, प्रभु यीशु इस कलीसिया की प्रशंसा में 7 बातें कहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा हुआ है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। आइए हम देखें पहली बात, वह कहता है मैं तेरे काम को जानता हूँ। ध्यान रखें कि वह विश्वासियों को लिख रहा है। प्रभु यीशु खोए हुए संसार से धर्म कर्म की अपेक्षा नहीं करता। तीतुस की पत्री 3 अध्याय के 5 पद में लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। और तब रोमियों की पत्री 4 अध्याय के 5 पद में वह कहता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। प्रभु यीशु अपनों से कह रहा है, आप जब उद्धार पा लेते हैं तब वह आपसे कर्मों के विषय कहता है। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय उसके 8 से 10 पद में लिखा है, क्योंकि विश्वास द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं है वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। पौलुस ने तीतुस को लिखा था 1 अध्याय के 16 पद में, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। किसी ने उचित ही कहा है, मसीही जन को एक अच्छी घड़ी के समान होना है, पूरा सोना, खुला चेहरा, उचित रीति से चलने वाला, विश्वास योग्य और अच्छे कामों से भरपूर। प्रभु यीशु इफिसुस की कलीसिया से कहता है, जैसा पौलुस ने कहा था इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 18 पद में, दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और फिर पौलुस ने उन्हें बताया कि आत्मा से भरे होने वाले विश्वासी क्या कर सकते हैं। अब प्रभु यीशु उन्हें भले कामों के लिए सराहता है। दूसरी बात है, मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं। काम और परिश्रम में क्या अंतर है? परिश्रम में मनुष्य थक जाता है। सुसमाचार वृत्तांतों में लिखा है कि प्रभु यीशु चलते चलते थक गया था। इफिसुस के विश्वासी भी ऐसा ही अनुभव करते थे, वे प्रभु यीशु के लिए परिश्रम करते थे। तीसरी बात हम देखते हैं, मैं तेरे धीरज को जानता हूं। धीरज आत्मा का फल है। और तब चौथी बात, तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, वे बुराई के साथ समझौता नहीं करते थे। और पांचवी बात है, जो अपने आप को प्रेरित कहते और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। वे हर एक प्रचारक को परख करके देखते थे, वे उनसे पूछते थे कि उन्होंने जी उठे प्रभु यीशु को देखा है। यदि वे कहते नहीं, तो वे जान लेते थे कि ऐसे प्रचारक सच्चे प्रेरित नहीं है। यदि वे सच्चे प्रेरित नहीं तो उन्हें शहर से बाहर जाने के लिए कहा जाता था। प्रभु यीशु ने उन्हें इस बात पर शाबाशी दी। मेरे विचार में आज इस परख की बहुत आवश्यकता है। छठवीं बात है, मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। वे प्रभु के लिए क्रूस उठा रहे थे, वे प्रभु यीशु का प्रचार करते थे और प्रभु यीशु का कुंवारी से जन्म मानते थे। वे प्रभु यीशु के ईश्वरत्व में विश्वास करते थे, वे उसके मृत्यु और पुनरुत्थान में भी विश्वास करते थे। उन्होंने अपने विश्वास की कीमत चुकाई। और अब अंतिम और सातवीं बात, थका नहीं। उसके कहने का अर्थ क्या है? पहले तो वह कहता है कि वे थके नहीं और अब वह कहता है थका नहीं। यह मसीही विश्वास की असंगत स्थिति है। महान प्रचारक मूडी एक बार प्रचार से थककर चूर घर लौटे। उन्हें तुरंत ही दूसरी सभा में जाना था, अतः उनके परिवार ने कहा कि वे इस सभा को रद्द कर दें। परंतु उन्होंने कहा, मैं काम करके थक जाता हूं परंतु काम से नहीं थकता। मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु की सेवा करते हुए थक जाते हैं, परंतु प्रभु यीशु की सेवा से थकना त्रासदी है। इफिसुस की कलीसिया की प्रशंसा में प्रभु यीशु के ये सात वचन पेंतिकोस्त से सन 100 तक की सब कलीसियाओं के लिए प्रासंगिक हैं। इफिसियों की कलीसिया यहाँ सब कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो आइए हम आगे देखते हैं। अब एक दोषारोपण है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। उन्होंने प्रभु यीशु की जोशीली एवं गहन भक्ति में कमी कर दी थी। हमारे लिए समझना कठिन है कि पवित्र आत्मा ने इस कलीसिया को किस स्तर पर उठा दिया था। वह विश्वासियों को प्रभु यीशु के व्यक्तित्व या यूं कहें कि व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ संबंध में ले आया था। पवित्र आत्मा उन्हें उस स्थान पर ले आया था जहां वे प्रभु यीशु से कह सकते हैं, हम तुझसे प्रेम करते हैं। आज हमारे लिए यह बात महत्व नहीं रखती है, परंतु उनका प्रेम प्रभु यीशु के लिए बहुत महत्व रखता था। अतः अब उसे उनसे शिकायत थी। उसने कहा, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वे प्रभु के प्रेम से दूर नहीं थे, परंतु वे प्रेम त्याग के मार्ग पर थे। आज के उदासीन, संशयी, निंदक तथा उपेक्षा भरे संसार में रहते हुए हम इस बात को नहीं समझ सकते। आज कलीसिया में सांसारिकता इतनी अधिक बढ़ गई है कि हम आरंभिक कलीसिया की मसीह भक्ति और गहरे प्रेम को समझ नहीं पाएंगे। आरंभिक कलीसिया शिक्षाओं में नहीं, मसीह के प्रेम में चूक रही थी। इफिसुस एक महान नगर था और उसकी लालसाएं विश्वासियों को प्रभु यीशु के साथ पहले प्रेम से दूर कर रही थी। यह वही कलीसिया है जो 2.5 करोड़ की आबादी वाले उस नगर में सुसमाचार प्रचार में इतनी सामर्थ्य थी कि रोमी सम्राट और उस युग के बड़े बड़े लोगों ने भी सुसमाचार सुना था। उस क्षेत्र में पवित्र आत्मा ऐसा प्रभावी कार्य कर रहा था कि आज तक ऐसा दूसरा प्रचार अभियान नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, हम किसी न किसी के बारे में पढ़ते हैं या भेंट करते हैं जो प्रभु यीशु के साथ ऐसे घनिष्ठ संबंध में है। एक प्रचारक ऐसे भी थे जो टीवी की बीमारी में खून की उल्टियां करते, बेहोश होते हुए भी आदिवासियों में प्रचार करते थे। बेहोश हो जाते और जब होश आता तो फिर से प्रचार करने लगते। वह चलते चलते पुकार कर कहते थे, हे प्रभु यीशु, मैंने तुझे निराश किया है, परंतु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। वह प्रभु यीशु के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध में था। क्या आज आपका संबंध यीशु के साथ घनिष्ठ है? मेरे मित्रों, आज ऐसे घनिष्ठ संबंध की घोर आवश्यकता है। आज अनेक मसीही शिक्षाएं हैं जो आपको कुछ नियम सिखाती हैं और मनोवैज्ञानिक नुस्खे प्रदान करती हैं कि आप अपनी समस्याओं को हल करें। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वे सिखाते हैं कि आप अपने आप के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ और विशेष करके अपनी पत्नी के साथ कैसे निर्वाह करें। ये संबंध महत्वपूर्ण है और अधिकांश जन सोचते हैं कि यदि वे नियमों का पालन करें तो सफल मसीही जीवन जी सकते हैं। मेरे मित्रों, मैं एक प्रश्न पूछकर सारांश प्रस्तुत करता हूं। क्या आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं? आपकी परंपरा कुछ भी हो, आपकी कलीसिया कुछ भी हो, आपका कार्यक्रम कुछ भी हो, आप चाहे नियमों का पालन करते हो, यदि आप प्रभु यीशु से प्रेम नहीं रखते तो यह सब व्यर्थ है। यद्यपि कुछ परंपराएं अन्यों से अच्छी हैं, परंतु मसीह से प्रेम रखने वालों के लिए वे सब कारगर हैं। प्रभु यीशु के साथ घनिष्ठ संबंध आपके सब संबंधों और मसीही सेवा को आनंद से भर देगी। दो लड़कियां एक मिल में काम करती थी, वे घनिष्ठ सहेलियां थी। अब एक ने नौकरी छोड़ दी तो उनका मिलना जुलना समाप्त हो गया। एक दिन उनकी भेंट सड़क पर हुई। जो लड़की अब भी उस मिल में काम कर रही थी, उसने दूसरी से पूछा, क्या तुम कहीं और काम कर रही हो? उसने कहा, नहीं, मेरा विवाह हो गया है। मिल में काम करते समय वह ठीक 5 बजे उठकर घर चली जाती थी। उसका काम कठिन था और उसे पसंद भी नहीं था। अब वह विवाहित थी। यदि आप उसकी दिनचर्या देखते तो आप नहीं कहते कि उसने नौकरी करना छोड़ दिया है। अब वह पहले की तुलना में अधिक जल्दी उठती थी, अपने पति के लिए नाश्ता तैयार करती थी, उसका खाना बांधती थी। पति के जाने के बाद वह घर की देखरेख और अपने 2 बच्चों को संभालने में पूरा दिन व्यस्त रहती थी। 5 बजे वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर नहीं बैठ जाती थी। उसका पति 6 बजे घर लौटता था, तब वह उसकी प्रतीक्षा करती थी। उसके पति का काम तो उस दिन के लिए पूरा हो गया, परंतु उसका शाम का काम अभी आरंभ हुआ है। वह अपने पति को भोजन परोसती है और अपने बच्चों को भोजन कराती है, उसके बाद बर्तन धोकर बच्चों को सुलाती है और अपने पति के लिए अगले दिन की तैयारी करती है। जब वह अंत में बिस्तर में जाती है तो थक कर चूर हो जाती है, परंतु वह कहती है कि वह नौकरी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्रेम करती है। अंतर यही है। मेरे प्रियो, आपका पारिवारिक जीवन और कलीसियाई जीवन आपको बोझ लगने लगे तो मसीह के साथ आपके संबंधों में समस्या अवश्य है। यदि आप इसे साध लें तो सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया से कहता है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अब उनका उपचार क्या है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2:5 में लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। कहता है स्मरण कर। सबसे पहला काम जो उसे करना है, स्मरण शक्ति एक अति अद्भुत वरदान है। किसी ने कहा कि परमेश्वर ने स्मरण शक्ति इसलिए दी है कि हम ठंड में गुलाब उगाएं। किसी और ने कहा, स्मरण शक्ति ऐसा सुख है जिसका केवल एक अच्छा मनुष्य ही आनंद ले सकता है। मेरे मित्रों, क्या आपको स्मरण है कि जब आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था तब आपका मन कैसा आनंदित था और प्रभु यीशु आपके लिए कैसा महत्व रखता था? क्या आप उसके प्रति उदासीन और निष्ठुर हो गए हैं? क्या आप पुरानी दशा में जा रहे हैं? स्मरण करो कि आप कभी कहां थे। आप पुनः उस स्थिति में आ सकते हैं। तब वह कहता है, और मन फिरा। मेरा विश्वास करें कि विश्वासियों को मन फिराव की आवश्यकता है। हमें आत्मनिर्भरता का कवच तोड़ना है, अभिमान की कठोर परत को तोड़ना है, बड़प्पन का आवरण हटाना है। निस्सारता की चमक दमक मिटाना है, धार्मिकता का झूठा दिखावा त्यागना है और संत होने का स्वांग रचना भी बंद करना है। मन फिराओ। मन फिराने का अर्थ है प्रभु के पास लौट आना। यह संदेश विश्वासियों के लिए है। अविश्वासियों से आप मन फिराओ के लिए कैसे कह सकते हैं? उसे तो उद्धार के लिए प्रभु को ग्रहण करना है और प्रभु यीशु को ग्रहण करके वह अपने पापों से विमुख होता है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 1:9-10 में लिखा है, तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो। कलीसिया को मन फिराव की आवश्यकता है, परंतु यह संदेश मन भावन नहीं है। स्मरण कर, मन फिरा और प्रभु यीशु के पास लौट आ। आगे वह कहता है, तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु कहता है कि यदि हम मन ना फिराएं तो वह हमारे दीवट को उसके स्थान से हटा देगा। आज अनेक आराधनालय खाली हो चुके हैं। क्यों? परमेश्वर का वचन वहां सुनने के लिए नहीं मिलता है। प्रभु यीशु दीवटों की निगरानी करता है और प्रकाश की कमी होने पर वह बत्ती को छांटता है या फिर बुझा देता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2:6 में लिखा है, पर हां तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। निकुलाइयों अर्थात जीतने वाले लोग, ये लोग कौन हैं? कुछ विचारकों के अनुसार ये लोग एक याजक समाज बना रहे थे जो मनुष्यों पर राज्य करना चाहते थे। कुछ विचारकों के अनुसार कलीसिया में ऐसा कोई गुट नहीं था। एक और विचार है कि निकोलास नामक एक अंताकिया वासी कलीसिया में था, जिसने सत्य का त्याग करके सदाचार विरोधी तत्वज्ञान का पंथ आरंभ कर दिया था, जिसके अनुसार पाप के समझने के लिए पाप करना आवश्यक है। वे व्यभिचार को अपनाते थे और कहते थे कि इससे आत्मा का संबंध नहीं है। इफिसूस की कलीसिया इस मत से घृणा करती थी। आगे चलकर के हम देखेंगे पिर्गमोन की कलीसिया इसे सहन करती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2:7 में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। लिखा है जिसके कान हो। हर कोई परमेश्वर के वचन को नहीं सुन सकता है। आवाज तो सब सुनते हैं परंतु संदेश ग्रहण नहीं कर पाते। प्रभु यीशु मसीह इस उक्ति का प्रयोग इसलिए करता है कि जो सुनने में सावधान ना हो वे सतर्क हो जाएं। सुसमाचार वृतांतों में भी प्रभु यीशु यही कहता है, उनके पास कान हैं परंतु वे सुनते नहीं। परंतु यहां एक आत्मिक अनुभूति के विषय में वह कहता है। लिखा है कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, कलीसिया का शिक्षक पवित्र आत्मा क्या कहता है? कहता है जो जय पाए। ये सच्चे विश्वासी हैं जो केवल मेमने के लहू के द्वारा ही जय पा सकते हैं। आगे कहता है मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा। आपको स्मरण होगा कि आदम के पाप करने के बाद उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया गया था। इसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 3:20-24 में पढ़ते हैं कि वह जीवन के वृक्ष का फल ना खाने पाए। स्वर्ग में कोई रोक ना होगी, हम सब जीवन के वृक्ष का फल खाएंगे। मैं यह तो नहीं जानता कि वह फल कैसा होगा, परंतु निश्चय ही उसे खाकर हम जीवन पाएंगे। हम अभी तो जीवन का अर्थ नहीं जानते हैं, परंतु स्वर्ग में वास्तविक जीवन होगा। फल खाकर हम ऐसा जीवन जिएंगे जैसा पहले कभी नहीं जी पाए थे। आगे कहता है जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में हैं, स्वर्ग की वाटिका, वहां केवल सोने की सड़कें ही नहीं भरपूर हरियाली है। मेरे प्रियो, एफिसूस की कलीसिया एक सर्वोत्तम प्रेरितों की कलीसिया का प्रतीक है, और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने पहला सा प्रेम खो दिया है। क्या आज आप प्रभु यीशु से वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा आप पहले उससे करते थे, या आपका प्रेम ठंडा हो गया है, आपका प्रेम कम हो गया है? परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उससे प्रेम करें और उन बातों से घृणा करें जो उचित नहीं है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा निरंतर आप सब से बातचीत करें और आप सब की सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है? ए बेटे तू सुन, मेरे बेटे तू सुन, मुझसे दूर क्यों रहता है? तेरे लिए मैंने जान दी, लहू जीवन मिले, कि तुझको जी